वेल, वही आस्था अरमान की बाहों में लेटी हुई थी और अरमान की चेस्ट के पास खुले दो बटनों के साथ खेल रही थी। आस्था का साथ अरमान को बेहद भाता था। उसे एक अलग लेवल का आस्था के साथ सुकून मिला करता था, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ था उससे वो बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि अगर बात अरमान सिंघानिया की होती तो वो आराम से उस चीज़ को हैंडल कर सकता था, लेकिन अब बात आस्था की थी। अबीर सिंह राठौड़ ने साफ साफ आस्था को उससे छिनने का चैलेंज दिया था। अरमान ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी बीवी का नाम कोई अपनी जुबान से भी ले, लेकिन फिलहाल वो आस्था पर प्यार की बौछारें कर रहा था और आस्था अरमान के प्यार में सब कुछ भूलते जा रही थी। वो ये भी भूल चुकी थी कि वो किस मकसद के लिए शहर में आई थी और अपना कौन सा काम वो पूरा करना चाहती थी। तब अचानक आस्था अपने सुनहरों हाथों की तरफ देखने लगी। हालांकि आस्था को जो हाथ पर चोट लगी थी वो अब काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन आस्था के हाथ सुन थे। अरमान आस्था को उसके हाथों को इस तरह से देखते हुए देख चुका था और समझ चुका था कि आस्था क्यों उदास है। उसने आस्था को बिठाया और धीरे से मुस्कुराकर बोला, अपनी आंखें बंद कीजिए। आस्था हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करने लगी। अरमान उसे डांटते हुए बोला, जब भी मैं तुम्हें आंखें बंद करने के लिए कहता हूं आप अपनी आंखें बड़ी बड़ी क्यों कर लेती हो? तो मैंने कहा ना, अपनी आंखें बंद करो, मतलब बंद करो। अरमान की बात सुनकर आस्था हल्का सा मुस्कुराई और फटाक से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अरमान ने आस्था से कहा, अपने हाथ आगे करो। आस्था को लगा कि जरूर अरमान उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाया होगा जो उसे देना चाहता है। आस्था काफी एक्साइटेड हो गई थी। वहीं अरमान ने जल्दी ही मेहंदी के कोन से आस्था के हाथों पर मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। आस्था को अपनी हथेलियों पर कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस हुआ और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसकी आंखें खुशी के मारे फैल गईं। उसने देखा कि अरमान ने बड़ा ही खूबसूरत सा हार्ट शेप का स्टिकर बनाए थे और वहां अपना नाम लिखा था। आस्था कितनी देर तक अरमान की लगाई हुई ब्यूटीफुल सी मेहंदी को देखती रही। वहीं आस्था ने तुरंत अरमान को गले से लगा लिया और दिलकश आवाज में बोली, आपको कैसे पता चला कि हम क्या सोच रहे हैं? हाँ, आप कैसे इतनी आसानी से हमारी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं? ऐसे बोलकर आस्था अरमान की आंखों में देखने लगी। अरमान ने आस्था के माथे को चूमकर कहा, आपकी ये आंखें मुझे सब बता देती हैं। चाहे आप अपनी जुबान से कुछ ना बताएं, लेकिन आपकी आंखें ऐसी हैं जो मुझे सारी बातें बता देती हैं। अब अरमान की ये बात सुनकर आस्था शर्माने लगी, लेकिन अब उसके दोनों हाथों पर मेहंदी लग चुकी थी और वो अपनी ये मेहंदी जाकर सबको दिखाना चाहती थी। वो एक्साइटेड होते हुए बोली, हम अभी सबको, नानी माँ को, रश्मि दीदी को, रौनक को, राधिका दीदी को मेहंदी दिखाकर आते हैं। तभी अरमान ने आस्था को कमर से होल्ड किया और उसकी बैक पर एक जोरदार किस करते हुए बोला, क्या आपका जाना जरूरी है? आप मेरे साथ भी तो रह सकती हैं। हालांकि अरमान को खुद अपने एक इम्पॉर्टेंट काम के सिलसिले में जाना था, लेकिन वो आस्था के पास जब भी हुआ करता था वो सब कुछ भूल जाया करता था। अभी आस्था अरमान के सवाल का जवाब देने वाली थी, तभी अरमान की फोन की नोटिफिकेशन ऑन हुई और अरमान का ध्यान तुरंत फोन की स्क्रीन पर चला गया। अरमान के एक्सप्रेशन बिगड़ गए थे। अरमान का फेस एकदम से ही डार्क हो गया था। तब आस्था ने मौका देखकर अरमान से अपनी कमर छुड़ा ली और वो सीधा दौड़ते भागते नीचे जाने लगी। वहीं अरमान को पता था कि आस्था चली गई है, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी खबर उसे मिली थी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। वेल, अब जैसे ही आस्था दौड़ती भागती नीचे गई वो खुशी से चिल्लाते हुए बोली, नानीमा, नानीमा कहाँ है आप? रश्मि दीदी, राधिका दीदी, रौनक, कहाँ हो तुम? अब जैसे ही आस्था ने इस तरह से जाकर आवाज लगाना शुरू किया वो सब जो कि एक साथ फटाफट से उसके सामने आ गई थी। वहीं नानीमा तो बोलने लगी, क्या हुआ मेरी बच्ची, जब कोई चोट तो नहीं लग गई? रश्मि और राधिका भी आस्था की ओर फिक्रमंद होकर देखकर बोली, क्या बात आस्था, तुम ठीक तो हो ना? ऐसा बोलकर वो सब तो बारी बारी से आस्था से सवाल करने लगी। तभी आस्था उन सबको एक साथ इस तरह से सवाल करते हुए देखकर टोकते हुए बोली, अरे आप लोग रुक जाइए, हमें तो बोलने का मौका दीजिए। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये देखिए हमारी मेहंदी। ऐसा बोलकर आस्था अपने हाथों की मेहंदी उन सबको बारी बारी से दिखाने लगी। अब तो सबके चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि नानी माँ ने राधिका और रश्मि को तो मेहंदी लगा दी थी, लेकिन क्योंकि आस्था के हाथ पर भी चोट लगी थी, हालांकि उसकी कलाई पर चोट लगी थी, हथेलियों पर नहीं, लेकिन फिर भी नानी माँ आस्था को मेहंदी लगाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी, क्योंकि इस बीच इतना कुछ हो गया था कि वो मेहंदी उनके दिमाग से ही ये बात निकल गई। तब नानी माँ ने मुस्कुराकर आस्था के माथे को चूमकर कहा, मेरी बच्ची, बस तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। चलो अब चाहे जैसे भी हो, लेकिन मेहंदी की रस्म तो पूरी हो गई है ना? अब सिर्फ और सिर्फ सीधा शादी की रस्में होंगी, और इन सबके बीच में हम एक छोटी सी रस्म तो भूल ही गए। अब सब हैरानी से नानी माँ की ओर देखने लगे। तब नानी माँ याद दिलाते हुए बोली, अरे बेटा, जिसकी शादी होती है उनको पानी भरने की रस्म भी की जाती है। अब पता नहीं यहाँ पर कैसा माहौल है, ये लोग रस्मों को मानेंगे भी नहीं। तभी दादाजी की आवाज गूंजती है और वो परवाह करते हुए बोले, शारदा बहन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जो भी रस्में आपको करनी है आप कीजिए, प्लीज आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि कोई मानेगा या नहीं मानेगा, हम सब तो सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे हैं। दादाजी की बात सुनकर नानी माँ मुस्कुरा देती हैं। नानी माँ छोटे छोटे सारे फंक्शंस करना चाहती थी, लेकिन वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये लोग कितने बड़े हैं और इन लोगों का एक एक मिनट कितना ज्यादा कीमत है। इसीलिए नानी माँ ने डिसाइड किया था कि वो जितना हो सकेगा सारे फंक्शंस कैजुअल रखेंगी और फटाफट से ये शादी कंप्लीट करवाएंगी। वेल, तभी आस्था ने अपने हाथों की बाहों को नानी माँ के गले में डालकर बोली, नानी माँ नानी माँ, हमें भी एक और रस्म करना है, प्लीज प्लीज प्लीज, आप उसे भी करवाएंगे ना? अब जैसे ही आस्था ने ये बोला सब हैरान हो गए। तब नानी माँ कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन बेटा ऐसी कौन सी रस्म है जिसके लिए तू इतनी ज्यादा एक्साइटेड है? तब आस्था तो अपना पपी जैसा फेस बनाकर बोली, वो नानी माँ हमने देखा था, वो हमारी फ्रेंड थी ना, उसने भी वो वाला रस्म की थी, तो तब से मेरा भी बहुत दिल कर रहा है वो वाली रस्म करने का। तब नानी माँ कन्फ्यूज हो गई और ना समझी में बोली थी कि ऐसी कौन सी रस्म है जिसके बारे में आस्था बात कर रही थी। तब आस्था बताती हैं, वो नानी माँ वो होता है ना, एक बड़ी सी थाली में बहुत सारा दूध भर दिया जाता है और फिर उसमें से अंगूठी ढूंढते हैं। अब जैसे ही आस्था ने क्यूट सा फेस बनाकर ये बोला, आस्था की बात सुनकर सभी जोरों से हंसने लगे, क्योंकि आस्था ने कुछ इस तरह से बोला ऐसा लग रहा था मानो कि वो रस्म कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तब नानी माँ मुस्कुराई और उसे चपत लगाते हुए बोली, बेटा ये शादी के बाद की रस्म है। तब आस्था मायूस होकर और उदास अंदाज में बोली, लेकिन शादी के बाद तो हमारी कोई रस्म नहीं हुई। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा कि ये वाली लाइन अरमान ने सुन ली थी, अरमान जो कि एक न्यूज के बाद सीधा हॉल में आया था। अब जैसे उसने आस्था की ये बात सुनी उसके दिल में दर्द सा महसूस हुआ कि वाकई एक लड़की की अपनी शादी को लेकर कितने ज्यादा सपने होते हैं, लेकिन अरमान सिंघानिया की वजह से आस्था का तो कोई सपना पूरा ही नहीं हो पाया था, तो कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन तभी नानी माँ ने आस्था के कंधे पर हाथ रखकर कहा,
अरे मेरी बच्ची, तू परेशान क्यों होती है? अब देख, मैं फटाफट तेरी शादी करवाती हूँ, उसके बाद एक बार फिर और देख कितनी धूमधाम से तेरी शादी के बाद की रस्में भी कंप्लीट करवाती हूँ। अरे मैं तब तक यहाँ से एक कदम बाहर नहीं रखूंगी जब तक कि मैं तेरी शादी की एक एक रस्में पूरी नहीं करवा देती। तब तक मैं इस मेंशन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। अब जैसे ही नानी माँ ने अपने मुंह फट होने का सबूत दिया सभी मुस्कुरा दिए थे। वहीं अरमान को भी आज पहली बार नानी माँ की बातें थोड़ी सही लगीं, वरना वो तो नानी माँ से हमेशा जेलसी फील करता रहता था। लेकिन तभी हॉल में एक आवाज आती है, अरमान बेटा। अब जैसे ही सबने इस आवाज को सुना सब घूमकर दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां पर एक सादी सिंपल सी साड़ी पहने हुए वसुंधरा रायचंद खड़ी हुई थी और अरमान की ओर आंसुओं भरी आंखों के साथ देख रही थी। अब जैसे ही अरमान ने वसुंधरा को वहां देखा, साथ ही दादाजी ने वसुंधरा को देखा, तो उनके खून में आग लग गई थी। वहीं आस्था भी वसुंधरा को वहां देखकर चौंक गई थी, लेकिन बाकी सब हैरान थे क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये वसुंधरा कौन है और अचानक से कहां से आ गई। क्योंकि जिस दिन वसुंधरा मेंशन में अरमान से मिलने के लिए आई थी उस दिन दादाजी ने उन सबको बहाने से शॉपिंग करने के लिए मॉल में भेज दिया था। अब जैसे ही वसुंधरा वहां आई और अरमान ने उसे देखा, उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो दादाजी तुरंत दांत भींचते हुए वसुंधरा के ठीक सामने जाकर खड़े हो गए थे और गुस्से से बौखलाते हुए बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब दादाजी की बातें सुनकर वसुंधरा तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ गई थी और दादाजी के पैरों को पकड़कर बुरी तरह से उसने रोना धोना शुरू कर दिया था और नकली आंसू बहाते हुए बोली, बाबूजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, जब से मैं आप लोगों से अलग हुई हूँ मैं एक दिन भी चैन से नहीं जी पाई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ बस मुझे कुछ दिन अपने बेटे के साथ रहने दीजिए, मैं अपने बेटे से अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसा बोलकर वसुंधरा अब बुरी तरह से रोने और गिड़गिड़ाने की एक्टिंग करने लगी थी। रौनक और सभी लोगों को वसुंधरा को इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए देखकर तरस आने लगा था, क्योंकि उन लोगों के तो नरम दिल थे और इसीलिए उन्हें उस वक्त वसुंधरा बहुत ही बेबस और लाचार औरत नजर आ रही थी, इसीलिए सबको काफी बुरा लग रहा था। वसुंधरा का इस तरह से रोना आस्था के भी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन तभी आस्था ने अरमान की ओर देखा तो अरमान एकदम ऐसा लग रहा था कि मानो अभी वो क्या से क्या कर बैठेगा। तभी दादाजी जोरों से तेज आवाज में चिल्लाते हैं, सिक्योरिटी फटाफट से अंदर आओ। दादाजी की बात सुनकर वसुंधरा बुरी तरह से रोने लगी और हाथ जोड़ते हुए बोली, बस कुछ दिन मुझे मेरे बेटे के साथ रहने दीजिए, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप तो करने दीजिए बाबूजी, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप करने दीजिए। ऐसा कहकर वसुंधरा बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी। हर किसी को उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, क्योंकि वसुंधरा ने ड्रामा ही कुछ ऐसा क्रिएट किया था कि सबके दिल पसीट चुका था। वहीं अरमान, जिस औरत से अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफरत करता था, उस औरत को यूं अपने सामने देखकर उसके खून उबल रहा था। हालांकि वसुंधरा की हालत उस वक्त काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी, लेकिन उस वक्त दादाजी ने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाकर वसुंधरा को मेंशन के बाहर निकलवा दिया था। लेकिन वसुंधरा रोते हुए चीखते हुए बोली, जब तक आप मुझे मेरे बेटे की शादी तक यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देंगे, मैं इस मेंशन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। इस मेंशन के बाहर ही अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगी, और आप अच्छी तरह से जानते हैं बाबूजी मैं कितनी ज़िद्दी हूँ। ये बोलकर वसुंधरा अब मेंशन के बाहर ही बेशर्मों की तरह पलटी मारकर बैठ गई थी। वहीं सब अब हैरानी से कितने ही सारे सवालों के साथ दादाजी की ओर देख रहे थे, स्पेशली नानी माँ। नानी माँ तुरंत दादाजी के सामने जाकर खड़ी हो गई और झिझकते हुए पूछती हैं, ये कौन थी भाई साहब, और ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर अरमान, जिसे उसके खबरियों ने इस बात की इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि वसुंधरा रायचंद सिंघानिया मेंशन आ रही है, उस वक्त उसका फेस डार्क हो गया था, इसीलिए वो जल्दी से वसुंधरा को मेंशन के अंदर आने से रोकना चाहता था, इसीलिए वो नीचे आया था। लेकिन उस वक्त वो आस्था की बातों में खो गया, तो इसीलिए वो वसुंधरा को रोक नहीं पाया। लेकिन अब जैसे ही नानी माँ ने सीधा सीधा दादाजी से ये सवाल किया कि ये कौन है, तब एक पल को दादाजी अपनी नज़रें चुराने लगे थे। लेकिन वो जानते थे कि जितना भी वो सच छुपा ले, सच छुपेगा नहीं, तो इसीलिए दादाजी ने बड़े ही कम शब्दों में वसुंधरा के बारे में नानी माँ को बता दिया था। वहीं नानी माँ का दिल, जो थोड़ी देर पहले वसुंधरा के लिए पसीज रहा था, अब वो एकदम से ही नफरत से भर उठा था, और वो तुरंत ही अरमान के पास गई और उसके सर पर हाथ रखकर बोली, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसा बोलकर नानी माँ ने अरमान को संतावना देती हैं, और उस वक्त न जाने अरमान को क्या हुआ कि अचानक से वो आज पहली बार नानी माँ के गले से लग गया था।